तो भगवद गीता में हम कहाँ तक पहुंचे थे, को बताना चाहें? यस, हम कहाँ तक पहुंचे थे पिछली बार भगवद गीता में? कौन पिछली बार आया था? कोई भी नहीं आया था। हाँ, अध्याय 4 श्लोक संख्या 5। ओके, ठीक है, और कोई बताना चाहे? यस यस, और कोई बताना चाहे? ये ठीक है। ओके यस, एक्चुअली हमने चौथे अध्याय के 15वें श्लोक तक कर लिया था और हम 16वें से लेकर 24 तक करेंगे आज, ठीक है? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे भगवद गीता में। तो ये जो श्लोक है इसको हम पढ़ते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्म किम कर्मेति, कव्योप्यत्र मोहिता, कवयोप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। आई एम सॉरी, या 16 का है, तो मैं हिंदी को उठाया ना इसलिए उल्टा ले लिया मैंने। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, थैंक यू। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने उसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा शिव नारद मनु चार कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म सुखदेव गोस्वामी यमराज जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोम इष्टपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पक्का दिव्य ज्ञान। हाँ सब, थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है यहाँ पे। हाँ दिव्य ज्ञान ही है पक्का? श्योर? ठीक है, यस दिव्य ज्ञान। कहाँ से देखा आपने? ऊपर लिखा हुआ है। ओके वेरी गुड। तो इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। इसके पहले वाले अध्याय का नाम क्या था? हाँ कर्मयोग। ओके कैसे पता किया? ओके वेरी गुड। तो इससे पहले हमने कर्मयोग के ऊपर चर्चा की, अब हम ज्ञान योग के ऊपर हैं। हाँ और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां भगवान ने काफी सारे योगों की चर्चा की है भगवद गीता में। हाँ कर्मयोग है, ज्ञान योग है, निष्काम कर्मयोग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इतने सारे योगों की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, अब भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ने आखिर में तो यही बोला भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। हाँ तो फिर सीधे बोल देते हैं गीता में 700 श्लोक देने की क्या आवश्यकता थी, गीता में सिर्फ एक श्लोक होता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक श्लोक भगवद गीता में, कितने श्लोक? एक श्लोक प्रभु जी, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन 700 श्लोक। हाँ और इतने सारे योगों की चर्चा हो रही है, तो ऐसा क्यों? इसका पहला कारण यह है कि भक्ति योग को अगर हमें बेस्ट बताना है तो उसके लिए बाकी योगों की चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आम लिखा हूं, ये है फलों का राजा आम। क्यों भाई ऐसा खास है? ये तो पार्शलिटी है, क्यों ऐसा क्या खास है भाई? नहीं ओके ठीक है, ये लो ये आड़ू है, ये लो आड़ू खाओ, कैसा लगा? हाँ अच्छा है, दिस गुड। अच्छा ये लो केला भी खाओ, केला भी अच्छा है। अच्छा ये पपीता है, पपीता ये भी अच्छा है। अब आम खाओ, अब बताओ फलों का राजा आम। ओ यस वाकई में फल तो बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन फलों का राजा वाकई में आम को ही होना चाहिए, है ना? उसी तो एक ये कारण है कि भगवान ने बाकी योगों की चर्चा की, लेकिन फिर आखिर में भक्ति योग की चर्चा इसलिए की ताकि ये बताने के लिए, देखो ये योग, ये योग, ये योग, ये योग, ये योग और भक्ति योग, बेस्ट भक्ति योग। तो हम समझ पाते हैं हाँ यस 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 ठीक है, सारे योगों में जो है बेस्ट भक्ति योग। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि भक्ति योग जो है वास्तव में इसके लिए योग्यता चाहिए, और ये योग्यता सबके पास होती नहीं है। जो शुद्ध भक्ति का जो योग है इतना ऊंचा योग कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होता है, उसके सारे कर्म, उसके सारे विचार, उसके संस्कार, उसका पूरा अस्तित्व कृष्ण भावना भावित होता है। क्या हम सब ऐसे हैं? तो यानी हम भक्ति योग, अगर शुद्ध भक्ति की बात करें तो हम अभी हमें योग्यता ही नहीं है वो, यानी हमें कोई एक ऐसी सीढ़ी चाहिए ताकि हम उस तक पहुंच सकें धीरे धीरे, है ना? तो इसलिए जो है ये बाकी योगों की चर्चा की गई है, क्योंकि ये बाकी योग जो है ये एक ही सीढ़ी है वास्तव में। ये ऐसा नहीं है कि ये योग ये योग ये योग ये योग, ऐसा नहीं है। ये ऐसे हैं ये योग ये योग ये योग ये योग भक्ति योग, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल है, इनकी डायरेक्शन एक है, ये अलग अलग डायरेक्शन नहीं है इनकी। इसलिए आप देखोगे कि अगर कर्म योग का चैप्टर है तो भी प्रभुपाद जी वहां भक्ति की बात कर रहे हैं, अगर ज्ञान योग का चैप्टर है यहाँ पे कृष्ण भावना भावित की बात कर रहे हैं, कृष्ण भावना की बात कर रहे हैं। इसके बाद के जितने चैप्टर आएंगे सब में भक्ति योग जो है प्रभुपाद के परपोर्ट में मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली गोल वही है। तो इस प्रकार की भी व्याख्याएं भी उपलब्ध हैं, हाँ, जिसमें कि कृष्ण भावना नहीं डालते ज्ञान योग ना, तो जो जो तात्पर्य या टीका लिखने वाले हैं उसे ज्ञान योग के बारे में चर्चा करते हैं, भक्ति योग के बारे में नहीं बताते। तो उसमें क्या गोल क्लियर नहीं होता, गोल का डब्बा गोल हो जाता है हाँ। तो लेकिन गोल जो है हमेशा क्लियर रहे, इसके लिए जो है हमें चाहिए कि हर ये जो योग है वास्तव में ये सीढ़ी है हाँ, योग तो भक्ति योग, शुद्ध भक्ति के योग तक ले जाने के लिए। जैसे कि नारियल तोड़ा जाता है, नारियल कैसे तोड़ा जाता है, नारियल तोड़ने के दो तरीके हैं। अगर एक नौसखी को दिया जाए, लो बेटा तुम नारियल तोड़ो, लो लेगा ये तोड़ दिया, अब इसी गरी निकालो, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट गृहिणी को दे दिया जाए कि नारियल निकालना है इसके अंदर से ना, जो बाहर का खोखा है उसके अंदर नारियल है, तो क्या करिए, ठक 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 ठक, हर जगह से ठक 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 ठक। तो कहते धीरे 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 अंदर का जो पल्प है वो बाहर के कवरिंग से अलग हो जाता है, वो मतलब इतना ज्यादा जुड़ा नहीं रहता वो, है ना। उसके बाद जब वो तोड़ती है तो आराम से टूट भी जाता है राइट, और उसका जो है वो खोखा आराम से निकल आता है, जो अंदर जो उसका पल्प है वो आराम से निकल आता है, क्योंकि क्या है आपने ठक 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 करके धीरे धीरे करके क्या किया, उसको अलग कर दिया हाँ। तो इसलिए जो ये सारे योग है जब इनका अभ्यास किया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वास्तव में जो जीव है वो आत्मन्वेषक कर पाता है, ही बिकम्स इंट्रोस्पेक्टिव हाँ। या कर्मकांड करता है और ठीक है कर्मकांड कर रहा है, कुछ फायदा होगा उसे, लेकिन धीरे धीरे वो सोचता है कि कर्मकांड से जितने रिजल्ट मिलते हैं, जो फल मिलते हैं, वो तो टेम्परेरी होते हैं, कोई ऐसा नहीं जो परमानेंट दे हाँ। तो क्या इस तरह से उसकी चेतना का विकास होता है। तो ये जो है सीढ़ी है वास्तव में। तो भगवान जो है हमको ऐसे नारियल नहीं फोड़ रहे, भगवान कैसे नारियल फोड़ रहे हैं, ताकि धीरे धीरे जो है आत्मा शरीर से वैराग्य लाए हाँ, क्योंकि शरीर से बड़ी आसक्ति होती है, इसलिए लोग शरीर को सजाते कितना ज्यादा, है ना। ब्यूटी पार्लर तो है हमारे पास, सोल पार्लर है, किसने देखा है सोल पार्लर हाँ, या इस्कॉन है ऑफकोर्स, ये हमने सोल पार्लर खोरा है ऑफकोर्स, लेकिन इस्कॉन के बाहर आपने क्या देखा है, सोल पार्लर, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध बनाए, कभी देखा है नहीं, ब्यूटी पार्लर, आपकी झुर्री आ गई है, वेल नॉट अ प्रॉब्लम, हमारे पास एंटी रिंकल क्रीम है, अब आप खूबसूरत दिख रहे हैं, देखिए, और आप काले हैं, आप गोरे दिखना चाहते हैं, गोरे गोरे बनने की क्रीम, दिस क्रीम दैट क्रीम। तो शरीर के लिए तो सब कुछ किया जाता है इस संसार में, लेकिन आत्मा के लिए नथिंग। प्रभुपाद जी ने यूनिवर्सिटी में पूछा था, आपके पास कितने सारे डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फलाना ढिमकाना, सारे डिपार्टमेंट, सोल का डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, सोल का डिपार्टमेंट पता ही नहीं उनको, सिर्फ एक ही सोल पता है, जूते का सोल और कोई सोल नहीं पता, सोल वो क्यों, क्या होता है। तो इसलिए भगवान ने जो है यहाँ गीता में इतने सारे योगों की चर्चा की, क्यों, पहला कारण भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताना है, देखो ये बाकी योग है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, लेकिन बेस्ट भक्ति योग, और दूसरा कारण कि आत्मा को है, जो जीव है उसको एक सीढ़ी देना, ताकि वो भक्ति योग के रास्ते पर अग्रसर हो सके और वो योग्यता प्राप्त कर सके हाँ, वो जिज्ञासा लाए अपने अंदर, और वो एक्चुअली इस पोजीशन में पहुंच सके कि वो कहे भगवान मैं इस संसार के सभी धर्मों को त्याग करता हूं और मैं सिर्फ आपकी शरण में जाता हूं। अभी कोई करेगा ऐसा, भी कोई नहीं करना जाएगा, प्रभु जी हाँ देखिए अभी हमारे और भी धर्म है, समाज का धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है हाँ, और देश का धर्म है हाँ, हमारी जाति का धर्म है, फलाना धर्म, ये धर्म वो धर्म, तो इन सबसे वैराग्य ला के सिर्फ और सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति का जो जो योग है उसके लिए योग्यता हमको ये सारे योग देते हैं धीरे धीरे। तो ये भगवान इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं हमको, तो ये ट्रेनिंग मैनुअल है, भगवद्गीता क्या है, ट्रेनिंग मैनुअल, तो ये हमको जो है धीरे धीरे ऊपर लेके आता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं तुमको ना कर्म के बारे में बताऊंगा, अब कर्म के बारे में बताऊंगा यानी कि एक ना एक साइंस है, विज्ञान है जिसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं गीता में क्या है, बस कर्म किए जाओ, अगर सिर्फ यही होता कि कर्म किए जाओ तो भगवान ये नहीं कहते आओ चलो तुम्हें मैं कर्म के बारे में बताता हूं, भगवान कहते देख अर्जुन बड़ा सिंपल है, कर्म किए जा, गीता में है कि जी बस यही है कर्म किए जाओ, बस हो गया, गीता खत्म हो गया, 700 श्लोक में यही है, ये श्लोक में लिखा है कर्म किए जाओ, अगला श्लोक पढ़ते हैं कर्म किए जाओ, इसमें भी कर्म किए जाओ, 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 हो गया भाई हो गया, इसमें गीता में है क्या, यही तो है बस कर्म किए जाओ। इसे कभी कभी हम देखते हैं जो कहीं ट्रक्स या ऐसे कोई व्हीकल्स होते हैं पीछे लिखा होता है कर्म ही पूजा है, लिखा होता है, और उसके साथ में कुछ बना उन्होंने दीपक जलाए होते हैं हाँ, दीपक की फोटो होती है बीच में लिखा होता है कर्म ही पूजा है, और आगे पंजाबी ड्राइवर होता है जो चला रहा होता है, कर्म ही पूजा है। लेकिन ये किसकी पूजा है? क्योंकि जब पूजा की हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति होना चाहिए, जैसे हम कहें राधा पांच शर्त की पूजा है, ओके। लेकिन कर्म ही पूजा है का जो सिद्धांत है, ये किसकी पूजा है? ये पता ही नहीं। कोई पूजा माता जी है वो हम नहीं जानते, कर्म ही पूजा है, लेकिन किसकी पूजा ये नहीं पता। इसलिए वो दीपक भी जो जले हैं वो किसके लिए जलाए हैं वो नहीं पता। इसलिए कर्म ही पूजा का सिद्धांत है वो गलत है। भगवान ने कहीं नहीं बोला अर्जुन कर्म ही पूजा है, नहीं कहीं पे भी नहीं। क्योंकि कर्म जो है उसके बारे में भगवान विश्लेषण दे रहे हैं, बल्कि 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। इसकी इंट्रिकेसीज जो है उनको समझना बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट ईजी, यानी कि भगवान जो गीता में बता रहे हैं हम उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। या भगवद गीता के बारे में अगर हम कोई कमेंट्स भी देते हैं तो वो एकदम उल्टे होते हैं जो कि भगवान ने गीता में बोले। भगवान बोल रहे हैं कि कर्मों को की बारीकियां उसको समझना बड़ा कठिन है, और हम कहते हैं ओ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट कर्म किए जाओ, जस्ट डू योर जॉब। तो इसलिए जो है यहां कर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो कर्म के बारे में यहां बता भगवान क्या बता रहे हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और लगता है यार ये क्या आ गया, हमने तो सिर्फ कर्म ही सुना था, अब ये साथ में विकर्म भी आ गया और अकर्म भी आ गया। तो इनको समझते हैं। कर्म होता है कि हर वो कार्य जो आप शास्त्रों के अनुसार करते हैं उसे कर्म कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, जो भी शास्त्रों में लिखा अगर आप उसका अनुसरण करते हैं, चाहे आप कर्म कांड के लेवल पे करें, चाहे ज्ञान कांड के लेवल पे, किसी भी अगर आप शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं तो उसे कर्म कहा जाता है। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं दिए गए हैं, यानी कि पाप कार्य, उनको विकर्म कहा जाता है। ठीक है, तो यानी एक कर्म हो गए पायस एक्टिविटीज क्योंकि आप शास्त्रों के अनुसार कर रहे हो, एक हो गई इम्पायस एक्टिविटी या अपवित्र कार्य जिनको हम विकर्म कहते हैं। तो एक कर्म हो गया, एक ये विकर्म हो गया। जब कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, जब विकर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। ठीक है, जैसे नर की यातना है या जो कुछ भी कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, व्हाटएवर, वो विकर्म का फल हो गया। ठीक है, तो हमने ये किए तो इन दोनों से क्या मिलता है आपको, फल मिलता है। राइट, दो तरह के कर्म होते हैं, एक से आपको फल मिलता है, एक से नहीं मिलता। जिससे फल मिलता है उसके दो प्रकार हैं, अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको चार्ट? ठीक है, दो तरह के हैं, एक से फल मिलता है, एक से फल नहीं मिलता है। जिससे फल मिलता है उसके दो प्रकार हैं, जिससे एक से अच्छा फल मिलता है, एक से बुरा फल मिलता है, यानी कि पुण्य और पाप। और एक है अकर्म, यानी कि ऐसे कार्य जिनका कि आगे फल नहीं निकलता, यानी कि ऐसे वो फल आपको उसके भोगने नहीं पड़ेंगे संसार में उस कार्य के, उसे कहते हैं अकर्म। यानी कि ऐसा कर्म जिसके कि फल आगे प्रोड्यूस नहीं होते उसे कहते हैं अकर्म। ठीक है, तो अब क्या दो डिफरेंस है, एक से फल आता है, एक से फल नहीं आता है। जिससे फल नहीं आता उसको हम अकर्म कहते हैं, जिससे फल आता है उसको, उसकी दो डिविजन है, एक को कहते हैं कर्म, एक को कहते हैं विकर्म। कर्म का मतलब पायस एक्टिविटी, अच्छे कार्य जो शास्त्रों में मेंशन है, और विकर्म यानी जो शास्त्र में मेंशन नहीं है वो ले कार्य। ठीक है, आप सबको क्लियर है चार्ट ये वाला? हाँ, अब इसमें ट्विस्ट ये है, इसमें ट्विस्ट ये है। कोई कह सकता है प्रभु जी ठीक है पुण्य है और पाप है, ओके, अभी हम अकर्म को नहीं छेड़ रहे हैं, अभी हम इसमें कर्म पे और विकर्म पे। एक्चुअली पुण्य हो या पाप हो वो दोनों ही पाप है। और प्रभु जी ये क्या कह रहे हो आप, भाई पाप तो समझ में आता है, पाप बुरे काम करो बुरे फल मिलेंगे, नरक जाऊंगा, दिक्कत होगी, ठीक है, जो पाप है वो जहर के समान है, डन। लेकिन पुण्य, पुण्य भी पाप है इस संसार में। तो इस संसार में जो पुण्य भी किए जाते हैं, जैसे अस्पताल बनाना, अनाथालय बनाना, गरीब लोगों को दान करना, ये पुण्य कार्य है और इनके कारण व्यक्ति स्वर्ग भी जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ये भी पाप है। ये प्रभु जी ये क्या बात होगी, अच्छे काम ही कर रहा तो भी आप बोल रहे हो कि वो पाप। पाप और पुण्य में सिर्फ ये फर्क है कि पाप जो है वो तो डायरेक्टली पॉइजन है, लेकिन पुण्य शुगर कोटेड पॉइजन है। अब शुगर कोटेड पॉइजन में क्या होता है, जब आप शुगर कोटेड पॉइजन अगर को खाए, वेरी नाइस, लेकिन उसके ऊपर की जब कोटिंग जब पिघल जाएगी फिर जहर आएगा। राइट, तो पुण्य जो है आपको अच्छे फल तो देते हैं लेकिन आपकी पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करते, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आपके पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करते पुण्य। तो जितने भी आज हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्म स्टार्स हैं, या फिर कोई बिजनेस टाइकून्स हैं, या बहुत ऊंची सैलरी लेने वाले हैं, इन्होंने पुण्य किए हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग सच हाई अमाउंट ऑफ मनी और से रिस्पेक्ट, आदर है, सम्मान है, यश है, कीर्ति है, तो ये सब पुण्य के कारण मिल रहा है। लेकिन क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई है, इसीलिए ये सब ऐश्वर्य, ये सब सुख सुविधाएं मिलती भी हैं, तो फिर व्यक्ति इन सब का इस्तेमाल क्या किस लिए करता है? पाप कार्यों के लिए। क्लब्स किसकी वजह से चलते हैं? जिनके पास पैसा है, ऑफ कोर्स। डिस्कोथेक्स किनकी वजह से चलते हैं? जिनके पास पैसा है। बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूशन हाउस क्यों चलते हैं? जिनके पास पैसा है, राइट? तो वास्तव में जो पुण्य मिले और पुण्य के कारण जो आपको फल मिला, जिसकी वजह से एंजॉयमेंट भी हुई, जैसे कि जो कि वो शुगर कोटेड पॉइजन है क्योंकि यहां, लेकिन उसके बाद पाप करने की प्रवृत्ति क्योंकि नष्ट नहीं हुई, तो उन फलों को, उन पुण्यों को भोगते हुए व्यक्ति जो है फिर से पाप कार्य करता है और फिर वो नरक जाता है। एक तो है जो डायरेक्टली गया, एक है जो पुण्य मिले, पुण्य को एंजॉय किया और फिर गलत कार्य किए पुण्य को एंजॉय करते हुए, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई, और फिर वो पाप कार्य करता है, फिर वो नरक जाता है। So both of them are poison. Of course, अगर क्योंकि अब एक आम आदमी क्या देखता है, देखो भाई जो दान कर रहा है गरीबों को, हाँ, जो अनाथ आश्रम में दान कर रहा है, हाँ, हम इस बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि रोकना है हमें, हम इसकी भी चर्चा करेंगे वास्तव में इसको, how to spiritualize it. तो thank you for the background music. तो इसीलिए जो है, जो पुण्य है वो भी जहर है, एक्चुअली पुण्य भी जहर है। तो दूसरा अब क्या ऑप्शन बचती है हमारे पास, यानी कि अब जो पाप को पुण्य करो दोनों फंसेंगे हम लोग, है ना, दोनों के फल मिलेंगे, दोनों के फल भुगतने पड़ेंगे, और फिर क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो बेड़ा गर्क हो गई होगा, तो बेड़ा पार कैसे होगा भाई? बेड़ा पार होगा अकर्म करके। अकर्म का मतलब भक्ति के कार्य, अकर्म का मतलब भक्ति के कार्य, क्योंकि एक्चुअली कर्म जो कार्मिक लाइफ है ना, चाहे वो अकर्म हो चाहे विकर्म हो, सॉरी कर्म हो या विकर्म हो, वो ऐसी है जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, उसमें करंट दौड़ रहा है, ठीक है, अब उसमें हाथ लगा दो, ना 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 ना, आउच, करंट करंट है, अब कोई ओ इसमें करंट आ रहा है, मैं क्या, ओके मैं नहा के आता हूँ, फिर मैं, फिर करंट नहीं लगेगा मेरे को, मैं जाऊँ और फिर नहा के आऊँ और फिर मैं आऊँ, ओके ला 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 ला, जाओ, मैं नहा के आया फिर भी मेरे को करंट लग रहा है, ओके मैं पीएचडी डिग्री लेके आता हूँ अपनी, तो पीएचडी करके आता है वो, हाँ, और अपने हाथ में डिग्री लेता है और फिर कहता है ला 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 ला, फिर से करंट लगा उसे, पर उसको करंट सिर्फ एक चीज से नहीं लगेगा, अगर वो इस इलेक्ट्रिक वायर को इंसुलेट कर दे, राइट, और वो इंसुलेशन और कुछ नहीं है, वो उसी को कृष्ण भावना कहते हैं। अगर अगर वायर इंसुलेट कर दी जाती है तो आप वायर को पकड़ो आराम से, उसमें 1000 वोल्ट का करंट हो, लीस्ट बॉदर्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये जो इंसुलेशन है इसी को कृष्ण भावना कहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म ही भवबंधन से आपको मुक्ति दिला सकते हैं, पुण्य कार्य नहीं। पुण्य आपको जो है ऊपर लेके जाएंगे, स्वर्ग लेके जाएंगे, कुछ 1000 साल, 25,000 साल, 30,000 साल, बट आफ्टर दैट कम बैक। या यहां पर अगर पुण्य अगर किए भी, पुण्य का फल मिल गया, कोई धनी बन गया, कोई कीर्ति हो गई, यश मिल गया, पर उसका फायदा भी क्या होगा? बिकॉज अगेन वो शुगर कोटेड पॉइजन है, राइट? दैट्स वाई अकर्म हमें करना होगा। अकर्म क्या है? भक्तिमय कार्य। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, इसमें 18 जो श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब ये जो है, कोई कोई बोलना चाहेगा इसके ऊपर कि ये क्या चीज है? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, और दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, ये क्या श्लोक बोल दिया भगवान ने, राइट? लेकिन हमें यहां समझना होगा भगवान जो बोल रहे हैं, बिकॉज कृष्णा इज मोस्ट इंटेलिजेंट, हम सबके पास जो बुद्धि है वो भगवान की बुद्धि की एक चिंगारी की चिंगारी की चिंगारी की चिंगारी की चिंगारी 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 भी नहीं है हमारे पास, जो भगवान की बुद्धि है। तो भगवान जो यहां बोल रहे हैं, इट इज सो परफेक्ट, यहां भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्म करता है, जो कर्म में अकर्म, यानी कि जो भक्ति के कार्य हैं, भक्ति गा रहे हैं, हम भी ऑफकोर्स यहाँ डिबोटी से करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हाँ, और भी कई सारे कार्य जो हम लोग करते हैं। कई ऐसे सिंगर्स हैं वो भी माइक के आगे गाते हैं, हम लोग भी माइक के आगे गाते हैं, हाँ, कहीं अरे वो भी तो गाते हैं, ये भी गाते हैं, हाँ, वो भी बाहर बुक्स बेचते हैं, हाँ, द वीक, आउटलुक, दिस दैट, फलाने ढिमकानी, और ये भी बुक्स बेचते हैं, क्या फर्क है, राइट? कोई कह सकता है, पर अगेन यहां भगवान कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म को देखता है, यानी कि वास्तव में जो बुद्धिमान है वो देखेगा, भले ही ये लोग या फंड रेजिंग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक्शन तो ये कर्म हो रहा है, देयर इज सम एक्शन, लेकिन ये अकर्म है क्योंकि इसका फल नहीं है, मतलब कि इसका कोई पुण्य पाप पुण्य की कैटेगरी में नहीं आता, ये पाप पुण्य कैटेगरी से परे है। इसलिए जो कर्म में अकर्म को देखता है, यानी कि जो भक्ति के कार्य है, और जो अकर्म में भी कर्म को देखता है, अकर्म का यहां मतलब क्या है, कोई कार्य नहीं करना, कोई ऐसे योगी सिद्धि होते हैं, बाबा होते हैं ना, मौनी बाबा जैसे ही होते हैं, ये कुछ नहीं करना, राख मल लो, शरीर पे और जगह बैठ जाओ, लेकिन आप जिस जगह बैठे कुछ जीव हाँ मरे भी, अब यू आर ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं तो भी कुछ जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यानी कुछ जीव मर भी रहे हैं फिर से, है ना, यानी कि कर्म हो रहा है फिर भी। एक ऐसा बाबा, ऐसा कोई भी योगी जो कि कृष्ण, जो कि भगवान कृष्ण को नहीं मानता है, भगवान कृष्ण की भक्ति को नहीं मानता, लेकिन वो योग साधना कर रहा है, अगर ऐसा व्यक्ति अकर्म करते हुए, यानी कि हो सकता है वो संसार में इतना इन्वॉल्व नजर ना आए कि बहुत व्यस्त है वो, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति कर्म कर रहा है, क्योंकि इंसुलेशन क्या है, कृष्ण भावना। अगर कृष्ण भावना किसी योगी के पास नहीं है तो वास्तव में वो अकर्म करते हुए भी कर्म कर रहा है, और उसको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन भक्त कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है, यानी कि उसको फल नहीं भुगतने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित होते हुए कार्य कर रहा है। इससे जो स्लोगन है ना, कर्म ही पूजा है, इसको थोड़ा सा अपडेट करना होगा, यानी कि इसके शुरू में अगर हम लगा दें कृष्ण भावना भावित, तो ये सही हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित कर्म ही पूजा है, दिस इज करेक्ट। लेकिन ना सिर्फ कर्म ही पूजा है, आई एम सॉरी, बिकॉज कर्म का मतलब क्या है, एक्टिविटी According to scriptures. अब यहां तो हम divisions को भी जब नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा? अब कोई militant भी कह सकता है, कर्म करो, do your duty. मेरी duty है जिहाद, to kill people. अगर कोई इस्लाम को accept नहीं करता, मैं उसे मार दूंगा, ये मेरा कर्म है, तो ये मेरी पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो इसलिए जो है कर्म ही पूजा का जो सिद्धांत है, वास्तव में ये एक बोगस सिद्धांत है। तो इसको अपडेट क्या करना है, हमें शुरू में लगाना है क्या, कृष्ण भावना भावित, तो अभी क्या बन जाता है, कृष्ण भावना भावित कर्म ही पूजा है, दिस इज करेक्ट, ये सही है वास्तव में। तो इसलिए जो है भगवान यहां बता रहे हैं, भगवान ने शुरू में बता दिया कि देखो इसकी बारीकियां समझना कठिन है अर्जुन, लेकिन भगवान ने सिंपल तरीके से यहां जो एक्सप्लेन किया है, और वो एकदम परफेक्ट है वो। और ये दृष्टि कौन डेवलप कर सकता है, जो कि कर्म में अकर्म को देखे, यानी भक्ति कार्य, और अकर्म में भी कर्म को देखे, ये देखने के लिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना पड़ेगा। और ये बुद्धि कौन देते हैं, ददामि बुद्धि योगंतम, भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि कृष्ण भावना भावित है, वो वास्तव में देख पाता है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो इस तरह से इसको जो है, ये श्लोक दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है शुरू शुरू में कि ये क्या है, कर्म अकर्म कर्म, लाइक अ टंग ट्विस्टर, लेकिन वास्तव में भगवान यह बहुत विशेष बात बता रहे हैं यहां पे। और क्या क्या बताया भगवान ने, तो अब इसमें यह चर्चा जो हो रही है, तो 19वें में कहते हैं भगवान, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करते, ऐसा करता कहते हैं, जिसके पूर्ण ज्ञान से अग्नि के कर्म फल को भस्मसात, जिसने कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इसके पहले का अध्याय क्या है, थर्ड चैप्टर में कर्मयोग की चर्चा हुई है, इसका अगला चैप्टर जानते हैं क्या है, बताइए अगला चैप्टर क्या है, खोले गीता जिनके पास है, हाँ नहीं, कर्मयोग ध्यान योग छठा चैप्टर है, व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसके पहले चैप्टर क्या है, कर्मयोग, अब इसके बाद का चैप्टर क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी पहले कर्म योग था, अभी भी कर्म योग है, दोनों चैप्टर का नाम सेम है, लेकिन फिफ्थ चैप्टर में आगे कुछ ऐड हुआ है, कृष्ण भावना भावित कर्म। अब ये भावना कैसे आती है एक्चुअली, ये भावना जो है कृष्ण भावना भावित कर्म तो उसके रहे, पहले भी कर्म थे अभी भी कर्म है, लेकिन अब कृष्ण भावना भावित कर्म है, वो कैसे आते हैं दिव्य ज्ञान से। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग फोर्थ चैप्टर, हम चौथे अध्याय में इसीलिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान जब प्राप्त किया जाता है वास्तव में, तो हमारे कर्म को या एक्टिस करने के पीछे जो चेतना है वो बदल जाती है, और सारा खेल एक्चुअली चेतना का होता है, सारा खेल चेतना का है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई सोल्जर है वो भी लेता है और वो दुश्मन को पेट में जाकर मार लेता है, उसे उसको परमवीर चक्र मिलता है, लेकिन वही सोल्जर अब घर जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए गांव में, हाँ वहां जो है वो गुस्से में आके किसके पेट में घुसा देता है और उसको जेल हो गई, सेम कार्य किया उसने लेकिन भावना अलग। तो यानी कि व्हाट मैटर्स इज कॉन्शियसनेस, मैटर डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावना भावित कर्म, ये फिफ्थ चैप्टर है। तो ये भावना कृष्ण भावना कैसे आती है, दिव्य ज्ञान से आती है, यानी कि फोर्थ चैप्टर जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं वास्तव में। तो पूर्ण ज्ञानी वह व्यक्ति क्या होता है वास्तव में, इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वो कार्य तो करता है लेकिन उसके पीछे भावना क्या होती है, उसकी स्वार्थी नहीं होती, वो भावना क्या है कृष्ण भावना। अब वो कैसे आती है, अब अगर हम देखें ना, ये जो 19वां जो श्लोक है, अब इसके बाद 20वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। और 20वें में क्या है, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से सहमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। अब यहां जो 3 श्लोक हमने पढ़े, 19वें में भगवान क्या कह रहे हैं, जिसकी जो कि भोगों के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है, दूसरे भगवान क्या कह रहे हैं, सॉरी पहले बोला जिस जो कि भोगों में से विरक्त है ना, और 20वें भगवान बोल रहे हैं कि जिसकी आसक्ति नहीं है, और उसके बाद 21वें बोल रहे हैं जो कि ना प्रोप्राइटरशिप यानी स्वामित्व का भाव नहीं है। अब ये एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में चलता है, ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। जैसे कोई अब यहां पढ़ता इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होकर, इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होकर बहुत मुश्किल है, तो इंद्र तृप्ति की कामना तो हम सभी में से कैसे निकलेंगे, तो भगवान इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, भगवान क्योंकि जानते हैं बद्ध जी के मन में क्या चलेगा। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, तुम्हारे अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा इसलिए है क्योंकि तुम इससे आसक्त हो। ओ अच्छा, आसक्त हो इससे मैं, पर लेकिन आसक्त है तो क्या करें, मैं आसक्ति भला क्यों आती है। तो भगवान ने उसका आंसर अगले में दिया है, स्वामित्व का भाव। जब हमारा किसी चीज के प्रति स्वामित्व का भाव होता है कि मेरा है, तो फिर जो है हम वास्तव में उसके प्रति आसक्त होते हैं, ये मेरा है, इसलिए अगर कोई इसे लेके जाना चाहे मेरे से तो हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेके जाने की, क्यों क्या। अब स्वामित्व के भाव से क्या आती है, आसक्ति आती है, और जब आसक्ति आती है वास्तव में आसक्ति से उस चीज का शोषण या फिर उसका उसको भोगने की इच्छा आती है। तो ये वास्तव में सीक्वेंस चल रहा है इन 3 वर्सेस में। भगवान ने कहा कि इंद्र तृप्ति के से विरक्त होना चाहिए, इंद्र तृप्ति से विरक्त कैसे होगा, जब उसकी आसक्ति नहीं होगी। लेकिन आसक्ति से आसक्ति कैसे नहीं आएगी, ये जो विरक्ति भाव है ये अनासक्ति कैसे आएगी, भगवान कह रहे हैं जब स्वामित्व का भाव त्यागोगे, क्योंकि स्वामित्व के भाव से ही आसक्ति आती है, और आसक्ति से क्या होता है, उस चीज को शोषण या एंजॉय करने की इच्छा आती है। ये मेरा देश है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, हाँ, इसीलिए उनसे आसक्ति, और फिर यह एक्सप्लॉयटेशन भी होता है आगे जाके, बहुत एक समाज में हम देखें, ना भक्तों के समाज में नहीं। तो इसीलिए ये जो है ये दिव्य ज्ञान का ये चैप्टर है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें जो है बहुत ही बारीकी के साथ हमको ये बता रहे हैं किस तरह से वास्तव में हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये एक सीढ़ी है, ये ऐसे नहीं कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, और इसमें से वन ऑफ देम इज भक्ति योग, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो यानी कि योग की सीढ़ी है वास्तव में ये, इसीलिए तो भी ज्ञान योग बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किस तरह से हम वास्तव में इसे निकल सकते हैं। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं वास्तव में कि पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया जिसने की, तो कर्म फलों को भस्मसात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म फल भस्मसात कैसे होते हैं, दिव्य ज्ञान के द्वारा, और भगवान ने उसके लिए एनालॉजी दी है यहां पर, क्योंकि कह सकते हैं ज्ञान से ये कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान बहुत देखो भगवान जिस तरह समझा रहे हैं वो जानते हैं, बद्ध जी कैसे समझेगा। कहें तो भगवान कहते हैं देखो जैसे कि ना अग्नि होती है ना, अग्नि से ना अग्नि निकलती है, तो अग्नि से जिस तरह से जो डालो उसमें ना भस्म हो जाता है ना, उस तरह से दिव्य ज्ञान से कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान जो है इज अ परफेक्ट टीचर। तो जो चीज आपको समझने में या समझाने में मुश्किल हो तो हमें एनालॉजी का इस्तेमाल करना होता है। वास्तव में एनालॉजी जानते हैं, एनालॉजी क्या होती है? यानी कि एक हमारे आसपास ही कोई वस्तु जिसका इस्तेमाल करके हम एक ऊंचे सिद्धांत के बारे में बताया जाए। जैसे कि किसी को बताना हो कि हार्ट अटैक कैसे आता है, तो उसको बताओगे आर्टरीज आती होती हैं, वेन्स होती हैं, ये होता है, ये प्रेशर होता है और फिर उससे हार्ट अटैक आता है, तो इसे यार समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोले जा रहा है। हाँ, अब कोई एनोलॉजी दे कि जैसे कि नलका है, नलके में बहुत प्रेशर है, हाँ, और नलका जो है नलका में बिना आपने उसको एकदम बंद कर दिया तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर बनेगा तो पाइप ना फट जाएगा। हाँ, तो ना बीपी या जो हार्ट की बीमारी ना ऐसी होती है कि जो नली में ना नली जो है छोटी हो गई है तो प्रेशर बन जाता है, तो उससे जो है हार्ट अटैक आने की चांसेस जाती है। बीपी हाई जो होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि खून ना बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। जैसे कि पाइप को आगे से बंद कर दो तो फिर पानी कैसे दौड़ेगा, है ना, एनोलॉजी। तो यहां भगवान एनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर ये बताने के लिए किस तरह से अग्नि जो ज्ञान रूपी अग्नि है उससे कर्म फल नष्ट होते हैं। अब अग्नि का भगवान ने क्यों एनोलॉजी दी? अग्नि के दो कार्य हैं, एक है रोशनी, दूसरा है ऊष्मा यानी गर्मी। तो गर्मी का यहां पर एग्जाम्पल भगवान ने इसलिए दिया क्योंकि जो दिव्य ज्ञान है उसे कर्म फल तो नष्ट होते ही होते हैं, है ना, लेकिन अग्नि का दूसरा कार्य क्या है? रोशनी। तो यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद वास्तव में हम जागृत होते हैं, हम जागते हैं, हम देखते हैं कि वास्तव में चीजें वास्तव में कहां पर हैं, कैसे हैं। तो ये एनलाइटनमेंट ये दिव्य ज्ञान से आती है। तो उसके दो कार्य जो है क्या है, एक है ऊष्मा एक है रोशनी। तो ऊष्मा से क्या होता है, पाप कर्मों के फल नष्ट होते हैं, और दूसरा है एनलाइटनमेंट। इसलिए भगवान जो एनोलॉजी दे रहे हैं एकदम 100% परफेक्ट है। अब जैसे अग्नि जो होती है, अग्नि का एक और भगवान ने क्यों अग्नि का एग्जाम्पल दिया, अग्नि कहां होती है? लकड़ी के अंदर ही होती है। लकड़ी को जब घिसा जाता है तो क्या होता है, अग्नि निकल आती है उसमें से, राइट। तो अग्नि जो है उसके अंदर ही है। इसी तरह से जब भक्तगण आपस में बैठते हैं और दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, कथा श्रवण होता है, हाँ कीर्तन होता है, श्रवण होता है, तो क्या होता है, वास्तव में हम लोग चर्न कर रहे हैं, है ना, इस दिव्य ज्ञान को। तो क्या होगा, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान जागता है। दिव्य ज्ञान है आत्मा में, लेकिन क्योंकि माया के द्वारा आच्छादित है, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा आच्छादित है, इसलिए जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा। जैसे कि आपने देखा है जो अक्सर जो जो भुट्टे गर्म करती है, क्या करती है, उसके ऊपर लाख आ जाती है तो पंखा करती थी छक 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 छक, हाँ, तो उससे क्या होता है ऊपर की राख हट जाती है और फिर से जो है वो कोयला जो होता है धधकता शुरू हो जाता है। हाँ, वैसे ही दिव्य ज्ञान आत्मा के अंदर है लेकिन प्रकृति के तीन गुण उसके ऊपर है, लेकिन जब कृष्ण भावना का उसके ऊपर पंखा किया जाता है, कृष्ण कथा रूपी जो हम जो कीर्तन श्रवण करते हैं तो उसका पंखा होता है, तो उससे क्या होता है वो जो ऊपर की जो कवरिंग है वो हटती है, तो अंदर से जो अग्नि है वास्तव में जो उस अंगारे के अंदर यानी कि आत्मा में जो दिव्य ज्ञान है जो भगवान ने दिया है उसे, क्योंकि भगवान की ये आध्यात्मिक शक्ति है, जीव हम सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, तो जो है हम इसको रिवाइव करते हैं। इसीलिए जो है इस तरह की क्लासेस की व्यवस्था की जाती है ताकि हम लोग इस दिव्य ज्ञान को फिर से रिवाइव कर सकें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्लासेस में आना, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए जो कि बाहर कार्य कर रहे हैं। तो बाहर कार्य करते हुए चेतना क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि भगवान आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये हाँ जो स्वामित्व की बात हुई थी, हाँ, और जो केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत, ये जो ये इंस्ट्रक्शन है ये स्पेशली मतलब वैसे सभी भक्तों के लिए है लेकिन विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए, तो जो केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, तो यानी कि वो दिन रात 15-15, 16-16 घंटे जैसे कि आजकल का मल्टीनेशनल कल्चर है, इस तरह से कार्य नहीं करता भक्त, वो शरीर के निर्वाह के लिए यानी कि मैं मेरे पत्नी मेरा जो परिवार है उसका भरण पोषण हो जाए, थोड़ा सा आपातकालीन के लिए पैसा हो जाए, बस दिस इज इट, बाकी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि मनुष्य योनि का पर्पस वही है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं वहां पर, स्वामित्व का भाव हट गया, ठीक है, स्वामित्व के भाव के ना होने के साथ साथ क्या चाहिए, कोई कह सकता है प्रभु जी आप स्वामित्व का भाव ही नहीं तो मतलब अब सब कुछ खत्म, अब तो मैं क्या करूं, अब बीवी बच्चे कैसे पालूंगा अब, हाँ मेरा तो परिवार है मेरा, तो मैं क्या करूं। तो भगवान कह रहे नहीं 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 यू हैव टू एक्ट फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपको जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है। लेकिन अगर आप देखें समाज में हर व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है, वहां तो पता नहीं सबको ही चेयरमैन बनना है एक दिन। हाँ एक दिन मैं बनूंगा चेयरमैन, हम होंगे कामयाब, एक दिन होगी शांति चारों ओर, हम होंगे कामयाब एक दिन। पर भगवान ने शांति का सूत्र क्या बताया, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जान के कि मैं तुम्हारा, मैं ही परम भोक्ता हूं, मैं ही तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, ये जान के तुम्हें शांति प्राप्त होगी। ये जो है जो उग्र कर्म है, इसको उग्र कर्म कहते हैं, जो जो हम भौतिक समाज में भौतिक वातावरण में जब बहुत ज्यादा कर्म करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिया करते हैं, तो उसे उग्र कर्म कहा जाता है। तो इससे शांति कभी नहीं आएगी, होगी शांति चारों ओर, हम होंगे कामयाब एक दिन, कभी नहीं, आज तक नहीं हुए और कभी नहीं होंगे, फॉर श्योर 100% गारंटी है। हाँ और अगर आप देखें भौतिक समाज में इसीलिए सिर्फ खुशियों की एडवर्टाइजमेंट है, इश्तेहार है खुशियों के, लेकिन खुशियां नहीं है, क्योंकि उग्र कर्म किए जाते हैं, अकर्म नहीं किया जाता। उग्र कर्म, विकर्म, कभी कभी कर्म, अकर्म तो बिल्कुल भी नहीं। अकर्म क्योंकि भक्तों के समाज में आकर, भक्तों के संग में कृष्ण कथा का कीर्तन और श्रवण करके हम ही अपने आप को ट्रेनिंग दे पाते हैं कि हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि जा बस कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ इस और कर्म किए जाओ, 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 भगवद गीता में सिर्फ ये कर्म किए जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि कर्म की कैटेगरीज क्या क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है, तुमको क्या करना चाहिए। भगवान एकदम परफेक्ट टीचर है। और आगे क्या भगवान बता रहे हैं इसमें, और इस तरह से कार्य करता हुआ भी वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में, हाँ ये 22वें श्लोक में, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। अब देखिए जो आप एक्चुअली भौतिक समाज में आपकी जो डेस्टिनी है, ना तो उससे ज्यादा आपको मिल सकता है, ना उससे कम आपको मिल सकता है, ना उससे पहले आपको मिल सकता है, ना उसके बाद आपको मिलने वाला है। तो जो बहुत जो भौतिक क्रियाकलाप है वो तो डिसाइडेड है, लेकिन आध्यात्मिक क्रियाकलाप आपकी सिंसेरिटी के ऊपर, आपकी गंभीरता के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए भौतिक समाज में हम जो भी कार्य करते हैं तो जो आए भगवान कह रहे हैं स्वतः ही आए, आप एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, यानी कि अपना कर्तव्य समझ के जो कार्य करने करें, उससे जो आपको फल मिलेगा उसमें संतुष्ट रहें, और इस तरह से जब आप निर्वाह करते हैं देन यू विल बी हैप्पी। इसलिए हम लोग देखते हैं कई लोग जो है सिर्फ 5 या 6 घंटे कार्य करते हैं लेकिन वो 50,000 रुपये महीना फिर भी कमाते हैं। कुछ हैं जो कि बेचारे 12-12, 13-13, 15-15 घंटे लगे रहते हैं लेकिन फिर 8-10,000 आते हैं हाथ में। क्यों? अगर सिर्फ कार्य के ऊपर सब कुछ रहे तो फिर इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, है कि नहीं? जितना कार्य करो उतना पैसा मिले। जो 15 घंटे काम करे उसको 15 लाख रुपए मिले, जो 10 घंटे काम करे उसको 10 लाख रुपए मिले, जो 5 घंटे काम करे उसको 5 लाख रुपए मिले। लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। तो इसलिए वास्तव में गृहस्थ भक्तों के लिए विशेष रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम उतना कार्य करें जितने कि हमारा शरीर का भरण पोषण हो जाए, परिवार ठीक ठाक रहे, और थोड़ा सा आपत्ति के लिए आप जमा कर सकें। बस मनुष्यों ने इसलिए नहीं मिली कि हम किसी बड़ी कंपनी के कोई बड़े चेयरमैन बने, हाँ, और फिर हम थोड़ा शो ऑफ कर सकें कि देखो हमारे पास भी चमक दमक है, हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी का कार्ड। हाँ अगर पैसा नहीं है लेकिन फिर भी शॉपिंग करने का मन है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको। उसके बाद फिर उसको बिल चुकाने की टेंशन, हाँ, क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट बहुत बहुत हाई होता है। तो ये जो है इस तरह की जो संस्कृति है, हमें इससे निकलना है और भगवद गीता की संस्कृति को अपनाना है हमें। तो भौतिक समाज में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें क्या होता है, देयर इज ऑलवेज हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब कि किसी चीज को करने की बहुत इच्छा होती है, हाँ, काश 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 कि वो मुझे मिल जाता, काश, इसको कहते हैं हैंकरिंग। और हैंकरिंग का क्या दूसरा पहलू क्या है, लैमेंटेशन यानी दुख। अरे जैसे कुछ लोग कहीं मोबाइल खरीद लेते हैं, ये नया मोबाइल खरीदा, हाँ एक दोस्त आ गया वहां से, अरे ले ये वाला बढ़िया है, ये इसमें तो ये वाला फीचर भी है। हाँ तो इसलिए जो है हैंकरिंग और लेमेंटेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और संसार में आप देखिए यही हैंकरिंग है फिर लेमेंटेशन है। इंद्रिय भोग का कोई भी कार्य जो भी किया जाता है उसमें भी वास्तव में क्या होता है, पहले हैंकरिंग होती है, लेट मी एंजॉय दिस वे दैट वे दिस वे दैट वे दिस वे दैट वे दिस वे। पर उसके बाद क्या है, हैंकरिंग का दूसरा पहलू क्या है, क्या है, लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मैं मेडिटेशन नहीं, किसी ने मेडिटेशन बोला क्या, लेमेंटेशन यानी कि दुख। तो हैंकरिंग और लेमेंटेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वास्तव में, और यही संसार में हम लोग करते रहते हैं, पहले हैंकर करते हैं, हाँ पहले इंद्रिय भोग के पीछे भागते हैं और फिर लेमेंट करते हैं, ओह मैंने क्यों किया ये, फिर से हैंकरिंग, फिर से लेमेंटेशन, फिर से हैंकरिंग, फिर से लेमेंटेशन, फिर से हैंकरिंग, फिर से लेमेंटेशन, इस तरह से मनुष्यों ने बीत जाती है वास्तव में। तो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अब स्वतः लाभ से कौन संतुष्ट रहेगा, जो द्वंद से मुक्त है, जो द्वंद से मुक्त है उसका क्या होगा, वो हर प्रकार के लाभ में संतुष्ट रहेगा। अब ये जो एक्चुअली 22वां श्लोक है इसका, इसकी सीक्वेंस ऐसे चलती है, वह स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, लाभ से संतुष्ट कब रहेगा वो, जब वह द्वंद से मुक्त रहेगा। अब वह द्वंद से कब मुक्त रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो कि ईर्ष्या नहीं करता, जो ईर्ष्या नहीं करता वो द्वंद से मुक्त है वास्तव में। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में कहा जाए कि आध्यात्मिक गुणों की को विकसित करने में जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ी रुकावट है आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने में, वो है ईर्ष्या। क्योंकि वास्तव में जब हम ईर्ष्या कर रहे हैं किसी भी जीव से, तो वास्तव में वो हम ईर्ष्या कृष्ण से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीव क्या है, हर एक लिविंग एंटिटी क्या है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो अगर मैं किसी भी एक जीव से अगर ईर्ष्या करता हूं तो वास्तव में मैं एक तरह से भगवान से ईर्ष्या भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं भगवान की शक्ति से ईर्ष्या कर रहा हूं, राइट? तो इसीलिए जो है ईर्ष्या, जो ईर्ष्या से मुक्त है ऐसा व्यक्ति द्वंद से मुक्त है, जो द्वंद से मुक्त है वो संतुष्ट रहेगा। लेकिन ईर्ष्या कौन नहीं करेगा, ईर्ष्या से कौन मुक्त होगा, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वास्तव में संसार में जो हम जो सफलताएं और असफलताओं का जो द्वंद है, हाँ, जब हम इसके इसकी होड़ में लग जाते हैं तब ईर्ष्या आती है वास्तव में, मुझे सफल होना था वो सफल कैसे हो गया। तो ये सफलताओं असफलताओं का जो द्वंद है इसकी वजह से ईर्ष्या आती है, और इस ईर्ष्या के कारण क्या आता है, द्वंद आता है, और द्वंद की वजह से क्या है, व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। तो ऐसा व्यक्ति, तो ये अब इस श्लोक की ट्रांसलेशन फिर से पढ़ते हैं, जो संतुष्ट रहता है, हाँ कब संतुष्ट रहेगा, जो द्वंद से मुक्त है, जो द्वंद से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता। द्वंद से कौन मुक्त होता है, जो कि ईर्ष्या नहीं करता, और ईर्ष्या कौन नहीं करता, जो कि सफलता और असफलता के शिकंजा है, या जो उसका उसकी जो पशुपेश है, हाँ जो स्थिति है उसकी, उससे अलग है, हाँ उसमें स्थिर रहता है वो। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। तो जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान पूर्णता स्थित है उसके बारे उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो वास्तव में कृष्ण भावना की खूबसूरती यही है। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया था कि जो वायर है उसके अंदर करंट है, लेकिन उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो कृष्ण भावना की है। तो अब भले ही वायर के अंदर करंट अगर 1000 वोल्ट का है, लेकिन क्योंकि इंसुलेशन फर्स्ट क्लास है तो करंट लगेगा आपको नहीं। अब जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अगर करंट कम कर दिया जाए, 9000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 225 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, इन सारी स्थितियों में आपको करंट लगा नहीं लगा, नहीं लगा, जबकि आपने शुरू में जो वायर पकड़ी हुई थी उसके अंदर 1000 वोल्ट का करंट था, लेकिन क्योंकि कृष्ण भावना की उसके ऊपर इंसुलेशन थी इसीलिए आपको करंट शुरू से लेकर आखिर तक नहीं लगा। इसीलिए जब हम कृष्ण भावना भावित होते हुए जब कर्म करते हैं, तो भले ही हम शुद्ध भक्ति के लेवल पे ना हो, लेकिन क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते हुए भी भले ही हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हों, धीरे धीरे कम होंगी, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से जब हम कार्य भी करते हैं तो कृष्ण भावना की खूबसूरती है। अगर ब्रांड न्यू अगर व्यक्ति अगर आता है इसके अंदर, उसको भी कर्मों का जो जंजाल है उससे निकालने की शक्ति है इस कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना के अंदर। तो शुरू शुरू अंदर क्या है, जो कर्मों का जो जो फ्लो है वो बहुत तेज है, 10,000 वोल्ट, धीरे धीरे कम होगा। पर इन सारी स्थितियों में हम वास्तव में पाप कर्मों से मुक्त रह सकेंगे अगर हम भगवान के नाम की शरण लें। तो यहां यज्ञ की बात की गई है, तो जो यज्ञ है कलयुग में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो कौन सा यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। अग्नि यज्ञ प्रभावशाली होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, हाँ जो ब्राह्मण है और सब कुछ प्योर प्योर होना चाहिए, जो यहाँ भगवान बोल रहे हैं ना जो सामग्री है वो भी शुद्ध होनी चाहिए, गाय से आए, आजकल तो गाय नहीं है हमारे पास, हाँ वो यूरिया और पता नहीं किस किस का तो दूध मिलता है, हाँ तो इसलिए तो हवन तो करने से, तो हवन कौन सा वास्तव में कलयुग में हमें करना है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो ऐसे जो हम जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो हम किया जाता है तो क्या बताया जा रहा है यहां पर, उस हवन में वे आध्यात्मिक हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो ये पूरी वास्तव में जो क्रिया जो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, ये दिव्य है। तो इसलिए जो है इसमें हमें बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। तो कृष्ण भावना की इंसुलेशन है तो ही हम बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं, नहीं तो ये हाई वोल्टेज करंट है कर्मों का, हम नहीं बच सकते इसमें, इसमें से, क्योंकि कर्मों के अंदर ही उस कर्मों के फलों के अंदर जो बीज है वो अगले कर्म का बीज है, उसके बाद एक और फल निकलेगा, उस फल के अंदर एक और बीज है, उसे एक और फल है, उसके फल के अंदर एक और बीज है, उसे एक और फल है, इस तरह से कर्मों का जो चक्र है वो चलता रहता है। और इसे निकलने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वह है कृष्ण भावना मृत, ठीक है। तो इसलिए जो है कृष्ण भावना भावित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हरे कृष्ण, किसी का सवाल है कोई? यस, कोई अभी मानता है कर्म ही पूजा है? नहीं, यस, किसे कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? हाँ, अकर्म में कर्म देखना, अकर्म का मतलब इनएक्टिविटी, यानी कि कोई कार्य ना करना। जैसे मैं अगर से मैं कोई योगी बाबा हूं, ठीक है, मैं भक्त नहीं हूं, ठीक है, मैं योगी बाबा हूं, तो कहने को मैं कोई कर्म कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉर्पोरेट ऑफिस, नो, आई एम मेकिंग मनी, नो, मेरी बीवी मेरे बच्चे नहीं, कुछ नहीं, कोई सामाजिक कोई मेरा कार्य ना, कुछ नहीं, मैं बैठा हूं बस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप कहने को मैं कोई कर्म कर रहा हूं, नहीं, इनएक्टिविटी, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं क्योंकि बिकॉज आई एम ब्रीदिंग। तो कितने सारे के जो जीव है मेरे मुंह में गए, मैं जहां बैठा हूं यहां भी कुछ जीव गए, हमारे ऊपर बैठ गए, हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी धड़कन है, हाँ मेरा हृदय चल रहा है, मेरे फेफड़े चल रहे हैं, तो कर्म हो रहा है। तो दिखने में इनएक्टिविटी है लेकिन फिर भी ये एक्टिविटी है। तो अकर्म में भी कर्म हो रहा है क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, इसको कहते हैं अकर्म, यानी इनएक्टिव में भी एक्टिविटी, देयर इज एक्टिविटी इन दिस इनएक्टिविटी, इसको कहते हैं अकर्म में। भक्त करते हैं कर्म में अकर्म, कार्य करते हुए भी दे आर फ्री बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर कृष्ण, ठीक है, इसका मतलब ठीक। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो यानी कि कर्म है ऐसा, मैंने कहा था, मैंने इसलिए मैंने शुरू बताया, मैं एक योगी हूं जो कि भक्त नहीं है। ऐसे भी योगी होते हैं जो कि भगवान को नहीं मानते, ऐसे कहीं ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए आज भी, यहाँ देखो ना, आपको कराएंगे, आपको शांत रहना है, बत्तियां बुझा दो, हम लोग शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, शांति शांति शांति, इस तरह के योगी वाले हुए हैं, ऐसे भी समाज में मिलेंगे आपको, आप तो पूरे सुपरमार्केट है आजकल बाहर, बट फैशली भगवान जो भगवदगीता में बता रहे हैं, इट कंप्लीटली एक्सपोजेस सच फैलेशियस फॉर्म्स ऑफ योगा। तो वास्तव में इस तरह के जो योग हैं जो ये कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भावना से जिनका कोई संबंध नहीं है, कृष्ण भक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये सब के सब क्या है, विकर्म है, भले ही वो पुण्य हो चाहे पाप हो। तो इस संसार में जो पुण्य हो या पाप हो वो क्या है, क्या है, विकर्म है या पाप है। तो इस संसार या पुण्य और पाप दोनों ही पाप है वास्तव में, ठीक है, वो तो क्लियर ना सबको कि पाप और पुण्य दोनों ही पाप है, राइट, ओके, यस। मेडिटेशन करना और भगवान नाम का संकीर्तन करना, इसमें कोई, इसमें क्या अंतर है? भगवान का नाम का संकीर्तन करना ही असली मेडिटेशन है। इसके अलावा बाकी सारी मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं है, वो डिप्रेशन है। ठीक है, तो वास्तव में मेडिटेशन मतलब भगवान के नाम के कीर्तन में ध्यान आना, उसका श्रवण करना श्रद्धा भाव से। यस, हाँ, देखिए शुरू से। हाँ, तो जैसे कि होता है ना कि पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा चल रहा है, खूब अपनी स्पीड पे चल रहा है, आप पंखे को ऑफ कर दो, इलेक्ट्रिसिटी तो ऑफ हो गई लेकिन पंखा फिर भी चलता रहता थोड़ी देर, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम है अभी, है ना, मोमेंटम नहीं जानते हो ना आप क्या होता है ना, मतलब कि एक प्रेशर अभी भी है उसके अंदर, मतलब कि उसकी क्रिया का जो वेग है वो अभी है उसके अंदर, भले आपने ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके अंदर अब, लेकिन फिर भी वो घूम रहा है अभी। तो अभी हम जब कृष्ण भावना में जब नहीं आए होते तो हमने तो अपने मन के दास ही रहे, उसी के शिष्य रहे कि मन जी जैसा आप बोलो हम वैसे ही करेंगे, है ना। तो व्यक्ति जब कृष्ण भावना में आता है तो क्या है, उसने मन से अब विद्रोह करना शुरू किया है जीव ने, कि मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा, मैं भगवदगीता में भगवान कहना मानूंगा। तो लेकिन इसको थमने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, भले आपने उसका स्वामित्व छोड़ दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी आपने पंखे की, लेकिन फिर पंखा थोड़ी देर घूमता है, लेकिन स्लो डाउन होता है धीरे 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 धीरे, फिर रुक जाएगा वो, उस तरह से मन जो है धीरे धीरे स्थिर होगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम जो है कृष्ण भावना के साथ जुड़ें, कृष्ण कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ेंगे, तो क्या धीरे धीरे ये जो मन का जो पंखा जो बड़ा बड़ी तेजी से घूमता आया है अभी तक, ये धीरे धीरे रुकेगा। तो हमको जो है बस जुड़े रहना है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम कृष्ण भक्ति से अलग होंगे फिर ये इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन करना, तो वो फिर तो रहेगा और तेजी से आ जाएगा फिर धीरे धीरे। तो इसलिए जो है कृष्ण भक्ति में लगे रहना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मन चंचल है कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है चंचलता, हमारा स्वभाव है भक्ति करना। ये ठीक है बेटे, तू अपना स्वभाव दिखा, हम अपना स्वभाव दिखाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो अगर तू जिद्दी है तो तेरे से ज्यादा मैं जिद्दी हूं, मैं तेरे को भगवान की सेवा में लगा के रहूंगा या लगा के रहूंगी। तो इस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर और कृपा की याचना करते हुए हमको मन को हम धीरे धीरे वश में कर पाएंगे। पाप की प्रवृत्ति भगवान के कीर्तन से नष्ट होती है, पुण्यों से नष्ट नहीं हो सकती है, कि कोई पुण्य करे तो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं। पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का नाम, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। यस, हाँ, क्योंकि हम कर्म करना चाहते थे, जैसे भगवान ने कहा ओके बेटा ले तेरे लिए बना दी मैंने। जैसे कि कुछ सिटीजन्स हैं जो बड़े अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि बदमाशी करना चाहते हैं, तो शीला दीक्षित सोचेगी ओहो तिहाड़ जेल बनाना पड़ेगा। शीला दीक्षित नहीं चाहती थी कि तिहाड़ जेल बने, हाँ, अगर आप आना चाहोगे ना तो आप कभी जाओगे नहीं। भगवान ना एक्चुअली इच्छा का फर्स्ट क्लास फिल्टर है, क्योंकि वो तो भगवान तो अंदर परमात्मा रूप में है, तो उनके पास पूरी मशीन है देखने के लिए, ओके अभी 99.9% हुआ है, अभी 0.1 रह गया है, अभी कहेंगे अभी यहाँ पे रहे, अभी 100% कर ले। यस, हाँ, अच्छा, यस यस, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बोला जाता है, देखो बेटा ये ना पंखा चल रहा है, इसमें ना उंगली डालते हैं, उंगली कट जाती है, लेकिन बच्चे अनुभव तो है नहीं अभी, पापा बोल तो रहे हैं लेकिन ये तो फालतू बोलते रहते हैं, तो देखो बेटा उंगली मत डालना, चलता हुआ पंखा होता है ना उसमें उंगली डालते हैं, ठीक है मत डालना, लेकिन मन में चल रहा है डालूंगा तो जरूर, तो डाल दी उंगली, डाल ली, हो गया, मजा आ गया, दोबारा डालनी है नहीं। तो जीव अपनी कभी कभी जो है अपनी इच्छा का अगर दुरुपयोग करता है तो वो आता है संसार में, अरे तो यार यहाँ तो बहुत बेड़ा गर्क हुआ, बहुत यार बहुत बुरा हाल हो गया, तो एकदम कचूमर निकल गया, कद्दूकस हो गया, मिक्सी में घुमा के मैक्सिमम हो गया, कहीं का नहीं रहा मैं तो, आज आप ये गलती कभी नहीं करूंगा। तो फिर आप जब धाम जाएगा वो कभी सोचेगा नहीं भगवान, बस आपकी भक्ति, शुद्ध भक्ति, बस और कुछ नहीं। तो ये कुछ कुछ जी ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग करके यहां आते हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर से क्योंकि भगवान का कहना नहीं माना था इसलिए यहां पर आए, अब भगवान का कहना मानेंगे तो वापस चले जाएंगे, सिंपल। हाँ ना ना ना, अब एक बार डाल लिया उसने, हो गए मजे हो गए उसके, हाँ अब नहीं डालना कभी नहीं। हाँ जी, एक्चुअली जो पुण्य होते हैं ना, पुण्य से ना आपको सुविधाएं मिलती हैं। वेल, इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी कि कोई व्यक्ति अगर शराब खाने में जाए और बिना शराब पिए आ जाए, ठीक है। अब क्योंकि शराब खाने का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे ही होता है, अगर कोई समझदार व्यक्ति ना हो, न्यूट्रल हो, भोला भाला सीधा साधा, उसको नहीं पता अच्छा क्या बुरा क्या है, इस बात के कितने चांसेस हैं कि वो शराब खाने में जाएगा और बिना शराब पिए आ जाएगा? बहुत कम। लेकिन चांसेस होते हैं कि वो बिना शराब पिए आ जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। उसी तरह से संसार में पुण्य कर्म करके फर्दर और पुण्य को इकट्ठे करें, इसके चांसेस हैं लेकिन बहुत कम। यूजली जो पुण्यों से मिले हुई जो सुख सुविधाएं हैं उनका भोग करते हुए व्यक्ति पाप कार्य भी करता है। तो इसलिए पुण्य करके और पुण्य कमा सकता है, चांसेस हैं, ऑफकोर्स ऐसा होता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें इस द्वंद में नहीं पड़ना कि मुझे पुण्य करने हैं पाप करने हैं, क्योंकि दोनों ही पाप है वास्तव में। हमें भक्ति करनी है क्योंकि भक्ति सबसे निकालेगी हमें ये जो जंजाल है सारा संसार का। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। और तो भक्ति है, आई हैव रिजाइंड, आई एम हैप्पी। अगर वाइफ के मुझे साड़ी तो ला दो, कम ऑन, मैंने तो रिजाइन कर दिया, मेरे पास वैसे है ही नहीं, अब बस हो जाओ नहीं। अर्जुन तो यही चाहते थे, अर्जुन का भगवान मेरे को युद्ध नहीं करना, भगवान का नहीं युद्ध करना है तुम्हें, लेकिन भगवान ने कहा मम अनुस्मरा, मेरे को स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो जो व्यक्ति जहां पर है उसे वास्तव में उस परिस्थिति में उसको चीज चेंज नहीं करनी है, जो एक्टिविटी है उसको, एक्टिविटी के पीछे जो चेतना है ना वो चेंज करनी है हमें। ऑफिस जाना नहीं छोड़ना, लेकिन ऑफिस जाने के पीछे जो चेतना है वो बदलनी है हमें, नहीं तो अदरवाइज हम युद्ध देखें तो दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, अर्जुन पांडव सब ये युद्ध चल रहा है, सारा युद्ध चल रहा है, लेकिन फर्क है, दुर्योधन नर्क गया और पांडव भगवान के धाम गए, दोनों युद्ध कर रहे थे एक ही जगह पे, व्हाट वाज द डिफरेंस, क्या फर्क है? चेतना, कॉन्शियसनेस। दुर्योधन ने कहा था मेरे को चाहिए, मैं इन पांडवों को हराऊंगा और फिर ये राज्य मेरा होगा, आई विल बी द किंग। लेकिन पांडव क्यों कर रहे थे? भगवान ने कहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए हम युद्ध करेंगे। तो हमें जो कार्य है कार्य नहीं बदलने, कार्य की वजह चेतना है वो बदलनी है। तो जो गृह जीवन में है गृह जीवन के कार्यकलाप वो करने हैं, लेकिन उसके पीछे चेतना है, यानी कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन सबको फैसिलिटेट करना है, ये सुख इनको, ये वो सुविधाएं प्राप्त करानी है जिससे इनका शरीर का भरण पोषण हो, साथ में कृष्ण भावना का ये अभ्यास कर सकें। तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये घर के मुखिया काम होता है। नॉर्डर मैं थका रहा हूं, मेरे को कुछ बना कर दो, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, ये बच्चे बहुत शरारती हैं, ए चिंटू तू निकाल इसे, इसलिए नहीं होता घर का मुखिया, ही इज अ रोल मॉडल, उसको आदर्श बनना पड़ता है। तो वहां समय कृष्ण भावना भावित होना ये जरूरी है, कार्य नहीं बदलने, कार्य के पीछे चेतना को बदलना है, दैट्स अ पॉइंट। हाँ वाह, यस, इसीलिए सारा पाप है, इसलिए मैंने बोला कि पाप करो या पुण्य करो वो सारा पाप है, क्योंकि हम पुण्य कमाते हुए भी पाप कार्य करते हैं। Yes, absolutely. इसीलिए भक्तों का संग आवश्यक है।
हाँ
हाँ
उस समय वो भक्त हमारे साथ नहीं होते,
यस
तो हम उस समय कैसे डिफरेंशिएट करें कि वो पाप है कि पुण्य है?
सिंपल है, अगर आप वो एक्टिविटी भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हो तो अकर्म कहलाती है, ठीक है? आप भगवान की तुष्टि के लिए कौन से कार्य हैं, इसके लिए आप भक्तों से विचार विमर्श करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, साधु, गुरु और शास्त्र। जब कोई आप कार्य इन तीन फिल्टर से गुजारते हैं ना, तो आपके कार्य कभी आपको फंसाएंगे नहीं। साधु, गुरु, शास्त्र, तो हमारे जो गुरुजन है, जो भक्तगण है और शास्त्र, इन तीनों के फिल्टर से जब आपके जब कार्य होते हैं, इनके द्वारा अप्रूव्ड जब आपके कार्य होते हैं, तो आप बंधन में नहीं फंसोगे। नहीं पूछेंगे मतलब ये नहीं कि मैं अब मैं करने जा रहा हूँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये करने जा रहा था, प्लीज बताएंगे मैं क्या करूँ, मैं वो नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। या फिर आप साथ में लेके जाएं भक्त को, प्रभु जी मैं लोन लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। नॉट दैट, हमें जो है चेतना पे कार्य करना है, क्रिया पे कार्य नहीं करना। हम क्रिया की डिटेल के लिए भक्त के पास नहीं जाते, हम चेतना के लिए जाते हैं, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज कॉन्शियसनेस, चेतना, राइट? तो इसीलिए जो है मैं नहीं कह सकता कि किसी के पेट में छुरा डाल दिया, बोल दिया हरे कृष्ण प्रभु, मैंने चैंडिंग की थी इसलिए डाल दिया। सो ये तो ऑफकोर्स दुरुपयोग है। तो भक्त जो है वो आपको बताएंगे वास्तव में किस तरह से कार्य करने चाहिए, हाँ, और प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ, प्रॉपर चेतना में। ओहो, कहीं ना कहीं नहीं, यहीं पर हूं। हाँ एग्जैक्टली, यस, तो होती है जबरदस्ती। बेटा तेरे को जाना नहीं है, जो कर ले चल, नहीं तेरे को, मेरे को, मैं तेरे को प्रेम करना पड़ेगा मेरे से, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, तेरे को प्रेम करना पड़ेगा मेरे से, कर। ऐसे प्रेम होता है? हाँ नहीं, तेरे को तुमको मेरे से प्यार करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल किल यू, इसको प्रेम कहेंगे ऐसे? नहीं, हाँ एग्जैक्टली, इसलिए क्योंकि भौतिक संसार में कोई प्रेम है नहीं, इसीलिए। हाँ प्रेम का मतलब देर हैज टू बी फ्रीडम ऑफ चॉइस, यू लव मी और लीव मी। अगर ये स्विच ना हो तो देन देर कैन नॉट बी लव, उसको प्रेम थोड़ी कहेंगे, उसको तो तानाशाही कहेंगे, प्यार कर रहा नहीं कर रहा, भक्ति करेगा नहीं करेगा बोल, नहीं तो चलाऊं। तो क्या, हाँ भगवान, हाँ मैं बहुत बहुत भक्ति करता हूँ, हाँ बहुत भक्ति करता हूँ भगवान, तो क्या वो भक्ति है? नहीं। तो जहां प्रेम की बात होती है, देर हैज टू बी फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहां पर विकल्प होना चाहिए कि भगवान को पसंद करूं, भगवान के पास जाऊं, या भगवान से अलग हो जाऊं, और फिर मैं अगर चूज करूंगी ये चॉइस है भगवान पर मैं आपका होना चाहता हूं, तो हम कहेंगे यस देयर इज लव। तो अगर एक ही कमरा हो, अरे बेटे यही है, क्या कर ले, कहां जाएगा तू, है बता, तो फिर वो प्रेम नहीं रहेगा, वो गुंडागर्दी हो जाएगी। भगवान गुंडागर्दी नहीं करते, भगवान तो प्रेम करते हैं भक्तों से, इसलिए भगवान ने दो कमरे बनाए। ये बेटा एक वो कमरा है, मैं वहां नहीं रहता, मैं यहां रहता हूं, व्हाट इज योर चॉइस? तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, नहीं मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां आप नहीं है, जहां आप नहीं है वहां मैं खुश नहीं रह सकता, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, आपकी सेवा में मैं इसी कमरे में रहूंगा, इसलिए भगवान ने दो कमरे बनाए। एक कमरा बनाते तो वो गुंडागर्दी होती, कहां जाएगा, तो भक्ति नहीं होती फिर, इसीलिए बनवाए भगवान ने दो कमरे। और यस माता जी, यस आलसी ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो पहला सवाल है वास्तव में जो कि इनएक्टिविटी है, वास्तव में इनएक्टिविटी भी कर्म बताया भगवान ने, राइट? हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, ये जो कर्म में अकर्म को देखता है और कर्म में कर्म को देखता है, हाँ, जो अकर्म में कर्म को देखता है वास्तव में। तो जो ये जो है कि हम कुछ नहीं करेंगे भाई, जो आना है वो तो आएगा, रिलैक्स। अब ये है वास्तव में, ये विकर्म है, क्योंकि हम वास्तव में यहां पर जो आत्मा का धर्म है यानी कि क्रिया, आत्मा का ये जो है बहुत ही बेसिक, उसका ये विशेषता है क्रिया। तो क्रिया अगर हम नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो वास्तव में आत्मा के धर्म का वो उल्लंघन कर रहा है, तो वो विकर्म है वास्तव में। यहां जो आने आएगा, तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एक ही लॉ देखना है कि ओके डेस्टिनी से पहले किसी को नहीं मिलता है, डेस्टिनी के बाद किसी को नहीं मिलता है, डेस्टिनी से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, डेस्टिनी से कम नहीं मिलता। पर इसके अलावा और भी लॉज हैं, और भी नियम हैं जिनको हम एक साथ लागू होना पड़ता है इनको। तो उसमें एक नियम यह है कि जो क्रिया है वो आत्मा का एक आंतरिक विशेषता है उसकी, तो क्रिया तो उसे करनी पड़ेगी उसे। तो अगर वो बैठा भी हुआ है, वो स्टिल वो कार्य कर रहा है, ही इज ब्रीदिंग, कहीं जीव मर रहे हैं उसे, जहां बैठा है वो कहीं जीव मरे उसे, हाँ पलक झपकने पर कहीं जीव मर जाते हैं हमारे, ये पलक झपकी तो कुछ मर गए फिर, तो उससे तो बच नहीं सकता वो। दूसरा हमने बोला कि आज के जो जॉब्स हैं, ऑफकोर्स टाइम टैक्सिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें भी हमको जो कार्य करने चाहिए, हाँ जो अगेन जो उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है वो यही रहती है कि अगर कोई व्यक्ति इससे 10 घंटे भी काम करते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कल्चर है टिपिकल, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि होड़ की मैं और आगे निकल जाऊं मैं, हाँ और उसके लिए जो है फिर व्यक्ति और ज्यादा कार्य करे जितने की उसकी आवश्यकता नहीं है। वो 9 to 5 की जॉब करे, जितनी सैलरी आ रही है उसमें वो भरण पोषण कर सकता है वो, लेकिन वो अगर 2 घंटा अगर ओवर टाइम करता है तो उसके उसके 5,000 रुपये मिलते हैं। नो नीड टू डू दिस ओवर टाइम। तो जितना आप बेसिक रिक्वायर्ड है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा करना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पालूं, वो मूर्खता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा से उसने पा भी लिया तो भी उसने खो देना, क्योंकि भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो खोने के लिए ही है। भक्ति के समाज में जो कुछ आपको मिलता है वो हमेशा आपके साथ रहने के लिए है, और संसार में जो कुछ भी आप करते हैं वो अल्टीमेटली खो देने के लिए है। तो इसलिए जो है नॉर्मल जितना आपको जितना रिक्वायर्ड हो उतना करें, कोई उग्र कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और वो चॉइस जो है हमेशा रहेगी हमारे पास। कभी कभी ऑफकोर्स दिक्कत हो जाती है, उस केस में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान हमारी मदद करेंगे, भगवान की शरण लेनी चाहिए। यस भगवान ने बोला ना कि शरीर का भरण पोषण हो जाए, शरीर का भरण पोषण हो जाए थोड़ा आपत्ति के लिए, अगर मैं गृहस्थ जीवन के लिए बात करूं अगर तो लाइक दैट, बस दैट्स इट। यस आप कभी कभी, तभी मैंने कहा कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी स्थिति में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट सवाल है क्योंकि टाइम हो रहा है, आप सबको देरी हो जाएगी इसीलिए। हाँ नहीं, आत्मा को नहीं पता होता हमेशा, अगर वो मुक्त जीव है तो उसे पता होगा, अगर मुक्त जीव नहीं है बद्ध जीव है तो उसे नहीं पता होगा वो। हाँ यस यस, तो इसलिए जो है उसको चाहिए कि बजाय कि फ्यूचर के बारे में सोचे कल क्या होगा परसों क्या होगा, वो भगवान की भक्ति में लगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। अनाउंसमेंट्स है कुछ तो भक्तों से अनुरोध है थोड़ी देर रुक जाए 2 मिनट के लिए।
हरे कृष्णा, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु का, जिन्होंने विद एक्शन हमें जो है इतने सुंदर कथामृत जो है आनंद दिया। हरी बोल। कुछ अनाउंसमेंट है, जैसे कि टुमारो ट्यूजडे इज द थर्ड